गुरुरुन्मीलितांगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। नन्तं मनुपेतमपेशकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुषु हत्याविहीनायपराधलक्ष्यै कृत्वाश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना चिन्ते नुमस्ते चरणानि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं। आज सवेरे आप लोगों ने अजामिक उपाख्यान श्रवण किया, महाराज चित्रकेतु का उपाख्यान श्रवण किया, अभी अभी प्रहलाद महाराज जी का चरित्र भी श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की ये तीनों विशेषताएं हैं, कहीं भी ऐसा सुंदर सिद्धांत नहीं बतलाया गया, कहीं भी किसी का इसीलिए ये भागवत वेदों का भी प्रपक्व फल है, ये पहले ही बतलाया गया है। निगम कल्प तरोर गलितंग फलम सुखम खाद अमृतवसन पिवत भागवत रा भागवत रसमालय मुहुर्हो रसिका। वेद रूपी कल्प तरु का यह प्रपक्व फल है। जैसे रस तो पेड़ की मूल में भी होता है, पेड़ में भी रस होता है, उसकी डालियों में भी रस होता है, पत्तों में भी रस होता है, किंतु फल पकने के बाद में उसमें जैसा रस आता है पेड़ में, उसकी थड़ में, जड़ में, पत्तों में, डालियों में, वह मधुर रस नहीं होता, पेड़ के फल नहीं वो मधुर रस होता। इसलिए निगम अर्थात वेद उपनिषद सब कल्प अतरु है, जो इच्छा तो याद दे सकते, किंतु वेदों से वह रस नहीं आएगा जो श्रीमद् भागवत में रस वर्णन किया गया। इसलिए वेदों का विचार, उपनिषदों का विचार, गीता का विचार श्रीमद् भागवत, जिसने श्रीमद् भागवत श्रवण कर लिया और किसी को श्रम करने की जरूरत नहीं, बस श्रीमद् भागवत के उपदेशों का पालन करके जीवन उनका सार्थक हो जाए। हम सभी लोग भगवान को भूल करके जगत में, यह हमारा अपना नित्य घर नहीं है ये जगत, कब जाना पड़ेगा कभी ठीक नहीं, इसलिए शास्त्रों ने बतलाया कर्म ज्ञान योग तपस्या से भगवान को नहीं पाया जाता, केवल मात्र भगवान की भक्ति से ही भगवान को पाया जाता है। और भक्ति जिसको नहीं है वो भागवत नहीं समझ सकता है, भागवत पढ़ने का सुनने का वही अधिकारी है जिसको भक्ति है। पहले तो ये समझे कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, भगवत्ता की सीमा कृष्ण में है, वे अखिल रसामृत सिंधु, इस चीज को समझे। व्यास जी के वचनों में, सुखदेव के वचनों में विश्वास है कि जो कुछ कर रहे हैं ये परम सत्य है, इसलिए भागवत में कहा गया है एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। इस चीज को समझना चाहिए, अंश होने से ही वो छोटा हो गया और अंशी होने से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। तत्वतः सभी एक ही है, एक ही चंद्र में 16 कलाएं होती हैं। तृतीया की कला देखती है छोटी, किंतु असल में उसी दिन पूर्णिमा वहां पर भी है पूर्ण रूप। इसलिए कृष्ण तत्व की दृष्टि से और सब तत्वों के बराबर होते हुए भी रस की दृष्टि से कृष्ण का वैशिष्ट्य है, कृष्ण सम है सब सर्व। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं, और उस भक्ति में भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। चाहे आदमी अत्यंत दुराचारी हो, कपटी हो, धूर्त हो, बदमाश हो, चोर है, डकैत है, खूनी है, सब कुछ है, किंतु वहीं से भगवान का नाम कर सकता है। वह चोर है इसलिए भगवान का नाम नहीं कर सकता, पहले चोर छोड़ करके चोरी, और अच्छा डकैत छोड़ करके बुरा छोड़ करके फिर भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं। उसी स्थिति से ही भगवान का भजन आरंभ कर दें। भगवान का नाम उसके जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, दोष है, सबको सुधार करके उसको विश्व में सर्वोत्तम व्यक्ति बना देगा। उसी का उदाहरण भागवत में अजामिल के द्वारा दिया। अजामिल बचपन में ब्राह्मण का बालक था, सदाचारी था, माता पिता का आदर करता था, अच्छे कुलीन घर की एक अच्छी लड़की से शादी हुई, उसके कुछ बाल बच्चे भी हुए, और तब वो पिता के लिए वन में गया लकड़ी लाने के लिए। वहाँ एक नीच जाति की लड़की से एक व्यक्ति को दुराचार करते हुए देखा, मदिरा पान कर रहा था, कपड़े ठीक नहीं, उसे हंसी मजाक कर रहा था। देख करके अपने को संयम करने की बहुत चेष्टा उसने की, किंतु जितने ही कितने मन को एकाग्र करना चाहा, संयमित करना चाहा, मन उसके हाथ से निकल गया। घर लौट गया, माता पिता को कहा नहीं, उनके सारे धन चुरा कर उस लड़की को देकर के उसके साथ में रहने लगा। जब धन समाप्त हो गया, वो भी उसी स्त्री के पास में आ गया, डकैती से चोरी से उसका भरण पोषण करता, यहाँ तक कि चोरी डकैती खून सब करने लगा, शराब पीता था। उससे उसको 8 लड़के हुए। जब 8वां लड़का पैदा हुआ तो वो बूढ़ा हो चुका था, और थोड़ी देर के बाद ही में उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ नारायण रखा। किंतु उस समय तक वो चोरी करता था, डकैती करता था, शराब पीता था, दुराचार में कोई भी पाप बाकी नहीं। माता पिता को तो छोड़ ही दिया था, स्त्री को भी छोड़ दिया, बाल बच्चे को भी छोड़ दिया, और दूसरी एक दुराचारणी स्त्री से उसको आठ उसका नाम रख दिया था। इसका फल क्या होता है वो नहीं समझा। मरने को जब हुआ तो जब भयानक उसके 3 प्रकार के कर्म, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तन से, मन से, वचन से जो किए जाने वाले कुकर्म थे, उन्हीं का रूप धारण करके 3 जमदूत आए और उसको प्राणों को खींचने लगे। ये डर गया, पासी में बच्चा उसका, नारायण नारायण बच्चे के लिए पुकारा, किंतु नारायण भगवान का नाम 4 अक्षर का, 4 विष्णु के दूत आए, उन्होंने जम के दूतों को भगा दिया। इन्होंने ये सब बतलाया होगा और बतलाया, देखो धर्म के ठेकेदार बने हुए हो, इसको नरक क्यों ले जा रहे। मैंने कहा ये हम लोग धर्म का तत्व जानते हैं, इसने अपनी पिता माता को छोड़ दिया वृद्धावस्था में, अपनी औरत को भी अपनी स्त्री को भी जो सती साध्वी थी उसको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। एक शूद्रानी लड़की से अवैध संबंध किए, चोरी डकैती खूनी जो कुछ पाप होता है सब कुछ पाप किया, इसलिए इसको दंड देने के लिए हम ले जा रहे हैं, इसका काल समाप्त हो गया। जम के दूतों ने कहा कि और कुछ किया तो? और तो कुछ नहीं किया। अरे कुछ प्रायश्चित इसने किया? नहीं। अतः तुम जानता नहीं है भगवान का एक नाम लेने से, किसी प्रकार से भी नाम हो, जान बूझ कर कर ले, श्रद्धा से ले, चलते फिरते छींकते उठते बैठते किसी प्रकार से भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसके जीवन में किए हुए समस्त पापों को, दूसरे जन्मों में भी किए हुए पापों को सबको विनष्ट कर देता है। किसने अंतिम समय में नारायण नाम तो किया था, या तो था किंतु अपने बेटे के लिए किया, भगवान के लिए किया, तो जिससे भी जैसे भी वो अपने बेटे के लिए करे न करे, जैसे भी चलते फिरते जम्हाई में भी राम राम निकल आएगा तो उसे साफ पाप जल जाते हैं। विशेष करके मृत्यु के समय में जो भी लोग भी मृत्यु के समय में भगवान का नाम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। जन्म जन्म मुनि चतन कराही अंतराम कही आओ, जन्म जन्म में जतन करते हैं, मृत्यु के समय में भूल जाते हैं। एक सुख पक्षी को हमने राम राम पढ़ाया, वो रोज सवेरे में राम राम कहता है, किंतु ज्यों ही पिल्ली आकर के एक थप्पड़ पंजे पर मारा के करेगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। वैसे हम लोग कर रहे हैं किन, मृत्यु के समय में भगवान का नाम नहीं याद आएगा। कप बात पित्त फेर लेंगे, जिसका निकल गया परम सौभाग्य है, जम के दूत वहां से भाग जाएंगे। इसलिए तुम लोग इसे छोड़ करके जाओ, एक नाम जो विवश होकर के भी ग्रहण कर लिया, संकेतम पारिहासिकम सौभम हेलनम, हेला पूर्वक भी यदि किसी ने अपने कुत्ते का नाम श्याम रख दिया, काला कुत्ता श्याम नाम रख दिया, मरते समय यदि श्याम कह दिएगा कुत्ते के लिए भी तो वो भगवान का नाम हो जाएगा, उसके सब पाप जल जाएंगे। देखो हमारा हिंदू धर्म कितना सरल है, सहज है। नमाज न भी करो, नमाज में देखो 10 बार 20 बार बैठना पड़ता है, हमारे यहाँ सिर पर मत झुकाओ, बस राम राम कृष्ण कृष्ण कह दिया, नारायण कह दिया, हरि कह दिया, बस हो गया। तो लोग कहेंगे इसे तो संसार के सब लोग तर जाएंगे, तो हर्ज क्या है? सब लोग माने कितने लोग कहेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, बाकी लोग जो घर में कहेंगे उनका तर जाएंगे, किंतु करोड़ों करोड़ों जीव हैं, सुअर है, गधे हैं, इंग्लैंड अमेरिका के लोग जानते ही नहीं है ये सब। इसे यदि विवश होकर के भी किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भी किसी को चिढ़ाने के लिए भी राम राम कह दिया, तो भी चलते फिरते फिसल गया गिर गया कोई, तो भी भगवान का उसका कल्याण कर देते हैं। एक समय एक सुअर जंगल में बैठा था और एक आदमी मुसलमान गाड़ी चला रहा था, वो उतर करके टट्टी करने गया। सुअर ने बहुत दूर से देखा और वो नाक की सीध में दौड़ते और चलते हैं, वहीं से दौड़ा उसको देख करके नाक की सीध में, और पैने दांतों से तीखे दांतों से उसको दो भागों में चीर दिया ऊपर से नीचे। मरते समय हराम हराम कहा, मुसलमान लोग हराम कहते हैं सुअर को देखकर, हराम कह दिया, किंतु हो गया क्या हराम? भगवान ने कहा जी हमें पुकारा, ठीक है जैसे तैसे हमें तो पुकारा है, इसलिए आप लोग खूब विश्वास के साथ में इस भागवत की कथा पर विश्वास करेंगे। कहने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो कह रहे हैं, नारद जी बतला रहे हैं, नहीं इसलिए ये असत्य नहीं है। इसलिए हरिनाम अभी क्या करेंगे जिससे कि मरने के समय में हमें याद आ जाए। अरे यदि आ गया तो जम ने कहा जमदूतों को, देखो इनके पास में मत जाना, किसने एक बार भी भगवान का नाम किया है। जिसके गले में तुलसी की माला हो खबरदार मत जाना, जिसने भगवान का चरणामृत एक बार भी पान किया है, भागवत की कथा में कहीं भी बैठ गया हो, जैसे तैसे भी बस पूरी कथा नहीं सुनी भी हो, उसके पास से मत जाना जिसका सिर एक बार भी भगवान के लिए ऐसे नीचे नप गया हो, प्रणाम कर लिया हो, जैसे तैसे भी उसके पास में खबरदार मत जाना, उसे तीन कोस दूर रहना। इसने तो भगवान का नाम किया, तुमको नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कि प्रभु हम तो जानते थे कि आप ही जगत के मालिक हैं, अब दूसरा कोई मालिक है क्या इसका? तो हाँ, हमारे भी मालिक वो प्रभु हैं जिनका ये नाम नारायण या भगवान या कृष्ण है, वो हमारे मालिक। आजकल का आधुनिक समाज के व्यक्ति थोड़े से ABCD पढ़ लिए, क ख ग घ पढ़ लिया, इन सबको नहीं मानते हैं। विशेष करके जिनका विदेशी ये सब हो गया, नहीं मानते, तो उनकी दुर्गति भी ऐसे ही होती है। अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर कहेगा कि इनसे कोई मत मिलो, तुलसी का पत्ता भी नहीं लेकर के दे सकते। कोई मिलने भी नहीं जाएगा जो घर वाले कहेंगे जी हरिनाम करो, मिले गति भी है। उसे अच्छा है कि हम निर्धन बने रहें, अपने समाज में ही हमारी मृत्यु हो, भगवान का नाम जैसे तैसे ले लें, तुलसी गंगाजल कोई दे दे, गोदावरी का पानी दे दे, कहीं का भी दे दे, और भगवान का नाम निकल आए। गीता भागवत वहाँ रख दे, तुलसी का पत्ता भी उसे छू जाए तो उसे जमदूत नहीं ले जा सकते, ये गारंटी बात और निश्चित बात है। इस चीज को यदि भागवत सुन करके यदि आपको यह पक्का विश्वास हो गया और आज से ही आपने हरिनाम करना शुरू किया, जितने भी दुराचारी क्यों न हो, जितने जो कुछ भी आपने पाप किया, सब पाप आपके जरूर धुल जाएंगे। इसलिए पढ़ो लिखो, घर का काम करो, सब कुछ करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु भगवान का नाम स्मरण करो। अंततः सवेरे रोज और कुछ नहीं आता है तो ये तो कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे इतना नहीं आता, राम हरि कृष्ण तो कह ही सकते हैं ना, राम हरि कृष्ण, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, अरे इतना तो कह सकते हो। इस तरह से भगवान का कोई भी नाम, इसलिए जम के दूध कभी नहीं आएंगे, ये गारंटी है। ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम वैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई गति नहीं है भगवान, नई विद्या आती है कोई बात नहीं, नई संस्कृत श्लोक आता है कोई भी बात नहीं, कृष्ण हरि राधे श्री राधे जय श्री राधे ये सब तो कही, राम सीता ये सब तो कही सकते हैं। इसलिए इस पर पक्का विश्वास रहेंगे, इसलिए आज ही से रोज सवेरे भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान का नाम करेंगे। और भी शास्त्र में बतलाया भगवान की महिमा, ये गीता भागवत में खुद कह रहे हैं, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां निपनिर्णितम् हरे नामानि। यह निश्चित रूप से निर्णित हो रहा है, यह निश्चित रूप में निर्धारित है, सत्य है, परम सत्य है कि भगवान का नाम संसार से उद्धार करने वाला होता है। इसको जिसमें कोई कामना है, जिसमें कोई प्रकार की कामना नहीं है, जो योगी है, ज्ञानी है, कर्मी है, जो भक्त है, सबके लिए ही, समस्त प्रकार के मनुष्यों के लिए भगवान के नाम ही एकमात्र गति है और कोई दूसरी गति नहीं। यहाँ तक कि भागवत का संपन्न जब कर दिया संपूर्ण, और परीक्षित महाराज जी को बतला करके जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अंत में यह बतलाया गया द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक, इसके बाद में कोई श्लोक नहीं, भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त प्रकार के दुखों का शमन करने वाला है। नाम संकीर्तनम यच्च सर्व पापो प्रणामो संहरि, हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका एक नाम का अभाव, नाम शुद्ध नहीं, वो तो प्रेम दे देगा भगवान का, प्रेम में बात में करा देगा। यदि नाम का आभास भी है तो भी संसार से, दुष्ट संसार से उसका सदा के लिए उद्धार। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी उल्टा मरा मरा करके ब्रह्म के समान बन गए। आपके अगस्त ऋषि इसी दक्षिण देश में कन्याकुमारी के पास में बैठे हुए थे, एक चिड़िया ने कहा कि हमारा घोंसला उजाड़ करके समुद्र ने हमारा अंडा बहा ले गया। वो लौटाता नहीं है, बार बार वो चिड़िया रो रही है। उन्होंने कहा जे नहीं देता तो नहीं, उन्होंने आकर के कहा समुद्र इसका अंडा लौटा दो। तो नहीं लौटाया तो उन्होंने क्या किया, नहीं लौटाएगा अच्छा तो देखो, बस उठाया पानी और लेकर पूरा उसे सोख गए। भागवत में भी इसका दूसरे रूप में वर्णन है। कुछ दुष्ट असुर लोग समुद्र में रहा करते थे और संसार में उत्पात मचाते थे। देवताओं ने अगस्त से कहा कि इसमें कुछ दुष्ट लोग रहते हैं जो जगत में अत्याचार करते हैं, आप समुद्र का पानी सोख लें तो इनको मारा जा सकता है। तो उन्होंने झट उठाया पानी और सब दिया। किसके बल पर? राम नाम के बल पर, राम की आराधना कर। इस तरह से श्रीमद्भागवत में नाम की महिमा है। इसलिए भागवत श्रवण करके नाम के प्रति आप लोगों का जरूर विश्वास। इसके बाद में आया चित्रकेतु उपाख्यान। महाराज चित्रकेतु बड़े भारी पराक्रमी राजा थे, बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे और उस समय सारे विश्व में उनका राज्य था। केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारे विश्व में आधिपत्य था। उनकी आयु हजारों वर्षों माने लाखों वर्षों से भी ऊपर थी। उनकी स्त्रियों का, करोड़ों स्त्रियों का उल्लेख नाम है जो उनकी करोड़ों स्त्रियां थी। हम लोग विश्वास नहीं करेंगे किंतु उस समय के लिए संभव था। उस समय आयु लाखों वर्ष अधिक की होती थी और बड़े शक्तिशाली होते थे, किसी को लड़का नहीं था। एक दिन महाराज पर्वत जी, पर्वत ऋषि और नारद ऋषि उनके पास, अंगिरा जी को उन्होंने कहा कि तुम कुशल से है, तुम्हारी रानियां तुम्हारी वशीभूत हैं, तुम्हारी सेनाएं तुम्हारी वशीभूत हैं, राज्य ठीक है तो, आनंद से जीवन कट रहा है तो, अर्थ की कमी तो नहीं, जो मनुष्य चाहता है वही सब पूछा उनसे। उन्हें सब ठीक है महाराज आपकी कृपा से, बस एक ही कमी है, मुझे पुत्र नहीं। मैंने हजारों शादियां की, अब बेटा नहीं। जब बेटा नहीं हुई तो मरने के बाद में हमारी कौन अग्नि का संस्कार देगा, हमारी गति कैसे होगी और राज्य का संचालन कौन करेगा, इसलिए हमको एक बेटा चाहिए। मैंने बेटा तो तेरे लिखा नहीं, बेटा तो तुम्हें होगा नहीं, महाराज आप समर्थ हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। बेटा उसे सुखी नहीं होगा, भगवान का भजन करने से आदमी सुखी होता है। इस जीवन में आकर के समझे कि मैं कौन हूँ, तभी सुखी हो सकता है। बेटे से तुम और घबरा जाएगा, तुम्हें कष्ट होगा। आजकल बहुत सी स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ दो चार हैं तो सुखी नहीं होती, कजे एक बेटा हो जाए, भले ही बेटा का आकर के उन्हें मारे पीटे, तो अभी बेटा ही चाहिए। अरे बेटियां तो तुमको एक ग्लास पानी भी देगी, नहीं? बेटा वो भी नहीं देगा, बूढ़े होने पर छोड़ देगा, तरह तरह से कष्ट देगा, कहे तुम्हारा धन संपत्ति है हमको जीवित अवस्था में दे जाओ नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे, और शूट कर देते हैं, किंतु फिर भी बेटा चाहिए। मोह भंग नहीं होता आजकल, बल्कि लड़कियां अच्छी हैं किंतु बेटे वाले सुखी नहीं हैं। हम देखते हैं चारों तरफ में, इधर उधर संसार में बहुत कम लोग हैं जो सुखी हैं। इसलिए इसके लिए भगवान ने जो कुछ किया उसे संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करना चाहिए भाई, अधिक लालसा मत करो। उन्होंने नहीं माना, जब नहीं माना और बार बार कहते रहे कि एक बेटा हमको चाहिए ही, तो उन्होंने देखा कि बेटा तो है नहीं, मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा कि तो मैं ही इसका बेटा बन जाऊं, योगी तो थे ही, बस वो वहां से चले गए। अच्छा अच्छा तुमको एक बेटा होगा, की तो तुमको हर्ष और सुख प्रद होगा, सुख भी देगा और आनंद भी देगा। उन्होंने सोचा बेटा तो हो ही जाएगा, अब कोई दुख होगा कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा यही तो अक्खड़ होगा, कोई बात। चले गए ऋषि जंगल में जाकर के अपने शरीर को रख दिया कहीं खंदरे में, और योग अभ्यास से उनकी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर गई और वहां बेटे के रूप में पैदा हो गए। 5 वर्ष तक बहुत सुंदर बेटे के रूप में आए, चांद जैसा मुखड़ा, बहुत ही मधुर बोली, सुतलाता तो इनका दिल भर जाता है। राज्य छोड़कर के उसी रानी के पास में रहने लगे जिसका ये बेटा हुआ। रानी ने सोचा और जो जिनको बेटा नहीं था, अब राजा हमें तो पूछता नहीं, पहले तो नौकरानी जैसे जैसे तैसे हमको कपड़े देता था, साबुन देता था, पूछता था ये ठीक है नहीं है, अब तो कुछ भी दिन में पूछता नहीं, ये लड़के के कारण इसलिए दिन भर वहीं पर पड़ा रहता है, इस लड़के को 20 दे दिया जाए, मर जाएगा तो फिर हम लोगों का आदर करेगा, ऐसा नहीं करेगा। बस ऐसे ही जगत में होता है। आजकल देखते हैं ना, जो दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए हैं, ये देखा जैसे ये हमारी गद्दी छीन लेगा तो उसको पहले मरवा देते हैं। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को बहनों को तलवार से घाट उतार दिया, विशेष करके जितने मुसलमान शासक हुए उन लोगों ने ऐसा किया, बड़े अत्याचारी और क्रूर होते हैं। माँ बाप को भी जेल में बंद कर दिया शाहजहां को, और अंत में क्या नतीजा हुआ उसकी भी यही गति हुई। उसने कहा कि देखो मेरे बेटे हो, पिता का सम्मान करना चाहिए, तो बेटों ने कहा कि तुमने जैसा सम्मान किया अपने पिताजी का और अपने भाइयों का, हम भी ऐसे ही आपका सम्मान करना चाहते हैं। जब वो 5 वर्ष का बाद तो उसको 20 दे दिया और वो बेचारा मर गया। उसको देख करके रानी हाय हाय करने लगी और उसके लाश को गोदी में ले लिया, छोड़े नहीं। बहुत समझाने की लोगों ने चेष्टा की, नहीं समझी। राजा भी आकर के पागल हो गए, वो भी मूर्छित होकर के गिर गए। और उसी समय में फिर अंगिरा और नारद ऋषि उनके पास में आए। मैंने क्यों रो रहा है, कोई उत्तर दे नहीं। भाई क्यों रो रहा है, आखिर तो बतलाओ। कोई नहीं बतला रहा, समय नहीं। अच्छा भाई ये तो बतलाओ, ये बेटा तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, रोता किस लिए है? जिसको तुमने बेटा कहा वो तो यहीं पर पड़ा है, उसको कफन से उड़ा दिया है, बातचीत तो करो। तो वो बातचीत नहीं करता। क्यों नहीं बातचीत करता? तो इसलिए कि वो जहाँ चला गया वहाँ से लौट करके फिर किसी को नहीं आना होता। अच्छा तो तुम इस बेटे के लिए नहीं रो रहे जिसको तुमने खिलाया पिलाया, लाड प्यार किया, तेल लगाया, अपसन लगाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, उसके लिए नहीं? जो आत्मा चली गई उसके लिए? हाँ उसके लिए रो रहे। तो आत्मा काली थी या गोरी थी, कितना लंबा चौड़ा था, आत्मा का नाम क्या था, सोचो, इसको विचार करो। यदि इसको सुना तो भागवत सुना और इसको पालन किया तब, अभी यहीं से जा करके महापंडाल से निकल गए बाहर से, अब बस भूल गए यहीं पर छोड़ कर, तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक ऐसा ही ब्राह्मण था, वो 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, उसको एक बेटा था, तो रोज दुकान में बैठता था। आज जब भागवत की कथा होती तो उसमें जाता था, 80 वर्ष तक भागवत सुना। तो उसका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे को कहा कि बेटा देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान पर बैठना, पास में कथा हो रही है वहाँ पर मत जाना, तुम अभी कच्चा है। ये कह करके 10-12 दिन के लिए बाहर चला गया। मैं कहा कि मेरे पिताजी कहेंगे तुम वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर कथा में क्या आती हो तो जरा देखूँ, तो वहाँ पर चला गया। सुना जे माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका नाम करना चाहिए, भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करना। अब उसके दिल में ये बात आ गई थी जैसे ये तो जरूर सुनना चाहिए, करना चाहिए। वो रोज रोज भगवान का नाम करता, रोज भगवान की कथा सुनने जाता, ठीक समय पर दुकान बंद कर देता और चला जाता। जब 10 दिन के बाद में उसका पिता आया तो उसने पूछा जे बेटा तू कहाँ जाता है? तो मैं भागवत कथा सुनने के लिए। ओ इसीलिए तो तुम्हारी गड़बड़ी हो गई, मैंने मना किया था ना, तुम अभी कच्चा है। मैंने 80 बरस तक भागवत की कथा सुनी, किंतु मैं जब सभागृह में से चलता हूँ तो वहीं पर भागवत छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर आकर के वो सब भागवत आगवत मैं नहीं जानता। और तुम कच्चे आदमी वहाँ से भागवत को लेते आए अपने मन में यहाँ, इसलिए तो गड़बड़ी हो गई। पहले पक्का हमारे जैसा बनो, सुनो किंतु वहीं पर छोड़ दो, पालन मत करो, तब तक ये भागवत सुनना, और नहीं तो तू भी बिगड़ जाएगा, और बिगड़ करके तुम भी भक्त हो करके, और तुम घर छोड़ करके वृंदावन में भागेगा और घर संसार नष्ट हो जाएगा। तो वैसे आप लोग मत करेंगे, जो कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर सुनेंगे, अपने हृदय में रख लेंगे, नहीं तो सभा घर में छोड़ देंगे तो भागवत सुनना नहीं होगा। तो उसने बतलाया, देखो जो चला गया उसको तो तुमने देखा नहीं, आ तो नहीं तो क्यों रोता है? ऐसे तो लोग लाखों लोग मरते हैं। देखो एक दिन की बात, एक कबूतर और कबूतरी, उसके कुछ बच्चे थे, उनको छोड़ करके जंगल में दाना चरने के लिए गए। चरते 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 उन्होंने देखा कि जंगल की घासों में, जमुन गंगा के किनारे, नदी के किनारे सुंदर सुंदर हरी हरी घासें हैं और उस पर मोती जैसे कण बिखरे हुए हैं चावल के। उन्होंने कहा कि प्रयत्न करिए, हम लोग बच्चों के लिए और अपने लिए दाना चुने। कबूतर ने कहा कि मैं नहीं चलता, अरे बनिए का घर थोड़े है या कृषक का घर है जो यहाँ पर चावल का दाना होगा, ये जरूर बहेलिया ने यहाँ पर दाना लगाया है तुमको पकड़ने के लिए और हमको पकड़ने के लिए। वो मानी नहीं, फुर उड़ी और जाकर के खाने लगी। कबूतर कभी बुलाने लगे इशारे से वो नहीं गया, और इतने में बहेलिया ने देखा कि ये कबूतरी तो खूब दाना चुन रही है, बस चावल खींच दिया उसके अंदर में, अब तो रोने लगी। उसने देखा ये तो जाल में पड़ी, ये तो मरी, वो भी वहाँ आकर के वो भी विलाप करने लगा। जब विलाप करते करते तन्मय हो गया तो बहेलिए ने अपनी धनुष बाण उठाया और उसके कलेजे में ऐसा बाण मारा जी इस पार से उस पार हो गया, वो भी गिर पड़ी और ताली बजाता हुआ हंसता हुआ आया। जाल में पड़ी हुई कबूतरी को और बाहर में मरे हुए इस कबूतर दोनों को बांध करके पीठ पर ला करके चला गया और उसको रसोई बना करके खा गया। ऐसे देखो संसार में कोई नहीं है जो बचा है, जो जन्म लिया है मरेगा, आप लोगों ने जन्म लिया है मरना है। ध्रुव जस्ट जिनका जन्म निश्चित, जापस्त ही ध्रुव, जिनका मृत्यु निश्चित है उनका जन्म भी निश्चित है, और जिनका जन्म है उनका मृत्यु है। ऐसा कोई है हाथ उठाओ तो जो मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगी, 2 वर्ष की बच्ची भी जरूर मरना है, हमारे बाप दादे सब मर गए, हमको भी मरना है आज कल परसों में, इसलिए भाई भगवान का नाम करो यही रक्षा करो। हमें तो कोई मर गया शोक में ऐसे व्याकुल हो गए जब मृत्यु आकर के उसको भी पकड़ लिया, अपना कर्तव्य नहीं किया, उनको कुछ ज्ञान हुआ कि जी आप हमारा उद्धार कीजिए, मैंने भगवान का मंत्र लो, भगवान का मंत्र दिया, जपने लगे, जप करके उनका उद्धार हो गया। थोड़ी देर बाद में उनकी स्त्रियां जिन्होंने बीज दिया तो वो भी नारद जी के पास मिली, हमने अत्याचार किया, हमने बीज दिया, हमारा कल्याण कैसे हो? उन्होंने कहा कि तुम भी भगवान का नाम करो, वो भी भगवान का नाम करके इस जगत से उद्धार हो। थोड़ी देर के बाद में ये चित्रकेतु महाराज जी कहीं जगत में घूम रहे थे हिमालय पर, शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोदी में लेकर और हरि कथा कर रहे थे ब्रह्मभक्तियों की सभा में, लाखों ब्रह्मभक्ति थे उस समय में। शंकर जी नंगे थे, सांपों का अलंकार पहन करके, और सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं, नारद जी को और सब ऋषि महर्षियों को, देवताओं को। चित्रकेतु महाराज जी आए वहाँ, हंसते हुए बोले ये मित्र, उनके मित्र थे, गुरु भाई हैं, बलराम जी के ये दोनों शिष्य हैं शंकर जी और ये चित्रकेतु महाराज। उन्होंने कहा तुम नंगे होकर के पार्वती जी की गोदी में लेकर के इस सभा में तत्वों का उपदेश कर रहे हो, ये तो उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्र को मित्र हंसी दिलगी कर सकता है, पर पार्वती जी को रोष हुआ, उन्होंने कहा कि तू शंकर का तू गुरु है, इनको शिक्षा देने के लिए आया है, ब्रह्मा इनको उपदेश नहीं देते, नारद जी जैसे लोग बैठे हैं और तू आकर के इनको उपदेश देने लगा, जाओ असुर हो जाओ। तो वो हंसने लगे, एवं अस्तु ऐसा ही हो। जिनको भक्ति होती है भगवान में वो कैसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, भक्ति किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होती। शंकर जी कुछ रोकते बोले, आज मैंने देखा पार्वती जी ने इनको अभी संपाद दिया, किंतु ये जैसे के तैसे रहे। और कहा चित्रकेतु महाराज जी तो वैसे के तैसे रहे, तुम अपने रूप के अभिमान में इनको ऐसा भी संपाद दिया, ये चाहते तो तुम्हारे अभी संपाद को दूर कर देते थे, नहीं हम नहीं भोगे, तुमको ही अभिशाप देते, किंतु इन्होंने नहीं दिया। इनकी महिमा बहुत अधिक, इसलिए उन्होंने तो ले लिया। और ये कौन असुर हुए, वृत्रासुर हुए, वह युद्ध कर रहे इंद्र से, इंद्र को कह रहे हैं हमें तू मार जल्दी से, इस आसुर देश से शरीर का से भगवान का भजन नहीं होता, किंतु वज्र लेकर के भी नहीं मार पा रहे हैं। और उस समय ये भगवान की स्तुति करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, यह प्रभो हमारा तन मन वचन आपने लगे, मैं आपका सब समय नाम ग्रहण करूं, अजात पक्षा मियो मातरम खदा। जैसे चिड़िया को दो बच्चे हैं, उनके पंख नहीं आए हैं, आंखें नहीं भी आई हैं, अपनी मैया के लिए चिल्ला रहे हैं, चिंता करते हैं, वैसे भगवान के लिए हम चिंता करते हैं। जिस प्रकार से बछड़े अपनी मैया को दूध पीने के लिए डकारते हैं, उसी प्रकार से मैं उच्च स्वर से भगवान का नाम कीर्तन करूं, और जिस प्रकार से स्त्रियां अपने प्रियतम को सब समय सेवा करने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही मेरा मन आपके चरणों में लग गया। तीन प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन, उन्हीं का नाम चिंतन करना और उन्हीं का नाम स्मरण करना, तीनों विशेष करके गोपियों का जैसा भाव है, ऐसे कृष्ण को प्रियतम मान करके हमारा मन आपके चरणों में। इंद्र देख कर कहते हैं कि असुर कहाँ है, इस स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है, तो उनकी गति क्या हुई, उनका शरीर दूर हो गया और फिर चित्रकेतु महाराज के रूप में भगवान का भजन कर। इसलिए यदि भक्ति का प्रारंभ कर दिया, नाम श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन कोई भी कुछ भी किया, और यदि भगवान के प्रति थोड़ी सी भी ममता और आसक्ति हो गई और उनका भजन कर दिया, उसका विनाश कभी नहीं, न्याभिकर्मनास्तो प्रत्यवायो न, कभी भी इसमें पक्षपात नहीं होता है, बस वैष्णव के प्रति साधुओं के प्रति गुरु के प्रति अपराध न हो, अन्यथा कोई पाप भी हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ी देर के बाद में फिर वह पुनः ऐसे होकर के भगवान का भजन करने लगता। प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में भी ऐसा ही दिखलाया, इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी का भी ऐसा ही, प्रहलाद महाराज जी के संबंध में इन्होंने बतलाया, केवल उपदेश बाकी रह गया थोड़ा सा, उन्होंने असुर बालकों को यह उपदेश दिया कि देखो कुमार आचरित प्रज्ञ, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की मनुष्य मात्र भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना कठिन नहीं है। असुर बालकों ने कहा जो अभी से क्या जरूरत है, जहां बड़ा हो जाएंगे तो बड़ा होने के पहले यदि मर गया तो कब भजन करेगा, इसे बचपन से, तो अभी हम खेलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे विवाह करेंगे बच्चे होंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तब बूढ़ा होने के पहले या तो मर गया, कमर भी तो सीधी नहीं होगी बूढ़े होने पर, दम खुलेगा उस समय तू भगवान का भजन कैसे करेगा, इसे बचपन से ही न तत्प्रयास होकर तब जाता आयु बराबर, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणम्। जिसको संसार में दुख भोगना नहीं चाहता किंतु दुख अपने आप आ जाता है, कोई दुख संसार में नहीं चाहता, अपने आप दुख आ जाता, सुख भी अपने आप आ जाता, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जरूर आएगा। बहुत से लोग हैं, कुछ सांप तो कोई काम नहीं करते, हम लोग भी अपने खाने के लिए भोजन के लिए क्या करते हैं, इसलिए सुख होगा तो अपने आप आएगा, इसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करो। देखो 100 वर्ष की आयु में 20-25 वर्ष पढ़ने लिखने और किसी एक विषय में एक्सपर्ट होने में लग जाते हैं, और उधर का 20 वर्ष 80 से 100 वर्ष में एकदम जड़ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। 40 वर्ष तो ऐसे गया, रह गया 10 वर्ष। इस 10 वर्ष में विवाह करना, बच्चों का परवरिश करना, कितने तरह के आपत्ति विपत्तियां होती, इसी में चला जाता है। भगवान का भजन आदमी कब करेगा? अपने छोटे छोटे सुतलाते हुए बच्चों को, अपनी प्यारी स्त्री को चैतन्य महाप्रभु की भांति कौन छोड़ करके जाएगा? अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके कौन जाएगा? भगवान का भजन करना बड़ा कठिन है, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। ये 10 वर्ष तो हंसते खेलते हुए चले जाएंगे, इसलिए मृत्यु और संभावी है करने, इसलिए सद्गुरु प्राप्त करो, उसकी सेवा करो और भगवान का नाम करो, उनकी कथाओं को स्मरण करो, यही जगत में सार है। इसके आपको अवसर प्रहलाद महाराज जी को बचपन में कैसे ज्ञान हो गया? ब्राह्मण के बेटे थे पूर्व जन्म में, बड़े अच्छे लड़के थे, अच्छे घर में खानदान में शादी हुई। कुछ दिनों के बाद में एक बेस्या को उन्होंने देखा, उसकी फेर में पड़ गए, अपना सारा अर्थ उसको दे दिया, जब सब ले लिया तो इनको वहां से भगा दिया, बहुत अपमान किया, अपना प्राण छोड़ने जा रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, इसने हमारा इतना अपमान किया, हमारा सर्वस्व ले लिया। जंगल में गए, वर्षा होने लगी, भेड़िए बाघ भालू गर्जन करने लगे, रात ठंडी रात कपाती हुई थी, एक मंदिर में ठहर गए, प्राण का तो मोह होता ही है, और वो लड़की भी बेचा भी रात में इनको खोजती 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 वहीं पर आई, वो भी एक कोने में दुबक गई। जब सवेरा हुआ तो देखा, अरे रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, देखा यह नृसिंह जी का मंदिर है, नृसिंह मंदिर में, और उसी दिन नृसिंह का चतुर्दशी का व्रत था, किंतु ये लोग जानते नहीं थे, अपने आप झगड़ने से उपवास हो गया, रात भर सोए नहीं दुख से, इसका यह फल हुआ कि महाराज ये प्रहलाद हुए, माता के गर्भ में रहे, नारद जी मिले, इनको उपदेश दिया, इसलिए बचपन से आए। इसलिए एकादशी का उपवास, रामनवमी का, जन्माष्टमी का उपवास, नहीं जानते हो तभी कुछ फल होगा, इसी से ऐसी सुकृति होगी जो भगवान के चरण मिल जाएंगे, और इससे कोई बड़ी गति नहीं, इसलिए सहज रूप में ही इन सब का करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, घर का काम करते हुए, इसी में हमारा कन्या, यही भागवत का उपदेश है। अब अगले कल हम लोग